हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 379। सुनैना ने ये बात थोड़ा सा अटकते हुए कही तो आदित्य उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में झांक कर देखते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? वही तुम्ही ने तो कहा ना अपनी हेल्प करने के लिए, तो बस वही। और इतना बोलते हुए वो उसके एकदम ही नज़दीक आने लगा तो सुनैना चाहकर भी अपनी शर्म भरी मुस्कुराहट नहीं छुपा पाई और वो अपनी पलकें झुकाकर नीचे देखने लगी। वो आदित्य तो कभी भी रोक नहीं पाती अपने करीब आने से, इसलिए इस वक्त भी वो रोक नहीं पाई, क्योंकि आदित्य की करीबी उसे एक ऐसा खूबसूरत और सुकून भरा एहसास देती है जिसे वो पल हमेशा ही फील करना चाहती है, और इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रही है। आदित्य की बाहों में वो सब कुछ भूल जाती है, अपने परिवार, पढ़ाई और सारी चीज़ों की टेंशन। उसे आदित्य के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए उसने आदित्य को मना नहीं किया। वो चाहकर भी कर नहीं पाई और आदित्य उसके करीब आया और फिर उसने सुनैना के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सुनैना ने भी देर नहीं की और अपना एक हाथ आदित्य की गर्दन में डालते हुए दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख लिया और उसे डीपली किस करने लगी। आदित्य को इतनी तुरंत ही इंस्टेंट रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे लगा था कि सुनैना तो अभी उसे मना करेगी, क्योंकि वो तो बस उसे टीज कर रहा था और सुनैना अभी पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, तो उसे लगा था वो चली जाएगी, लेकिन वो नहीं गई और उसका साथ देने लगी। तो उसका साथ पाकर आदित्य भी जैसे बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा और उसने सुनैना की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और नज़दीक कर लिया। इस वक्त उन दोनों के बीच की दूरियां जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और फिर किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगे। तभी सुनैना आगे आकर उसके गले लग गई और आदित्य ने भी पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दूसरी तरफ नैना वहां से इतनी हड़बड़ाहट में वहां से निकली कि उसने अरुण को भी अपने साथ वापस चलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था इन सब में उसे लेट हो जाएगा। और भले ही वो सुनैना के घर से निकल गई, लेकिन उसका ध्यान अभी भी सुनैना में ही लगा हुआ था। और इसके अलावा वो अक्षत को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों की परेशानियों जो कि उनकी लाइफ में चल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के सामने दूर रहने का दिखावा करना पड़ रहा है। आज इतने दिनों के बाद अक्षत ने उन दोनों के लिए ये सरप्राइज़ और सीक्रेट डेट प्लान की थी, जिसे नैना ने भी मना नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी कितने दिनों से अब तक के साथ कहीं भी बाहर नहीं गई थी, ना ही डिनर कर। इसलिए उसे लगा कि उन दोनों को भी ऐसे किसी स्पेशल डेट या फिर किसी भी टाइम की ज़रूरत है जिसमें सिर्फ वो दोनों हों, बस और कोई भी नहीं। इसलिए ही नैना सुनैना के पास और ज़्यादा देर नहीं रुक पाई और तुरंत ही वहाँ से निकली। और वो वहाँ से निकल तो गई थी 8 बजे से पहले ही, लेकिन वो होटल जिसमें अक्षत ने उन दोनों के लिए VIP डेट के लिए पूरा फ्लोर बुक किया हुआ था जिससे कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, वो होटल वहाँ सुनैना आदित्य के घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था और अक्षत ने उसे आधे घंटे में आने के लिए कहा। इस पर वो अक्षत को ठीक तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, इसलिए वो बार बार रास्ते में उसका नंबर डायल कर रही है, लेकिन उस एरिया में नेटवर्क नहीं है जिसकी वजह से वो उसे कॉल नहीं कर पा रही है। उसने अक्षत को मैसेज कर दिया कि उसे थोड़ी सी देर हो जाएगी आने में, वो प्लीज़ उसका वेट कर ले, लेकिन वो मैसेज अक्षत को डिलीवर ही नहीं हुआ। इसलिए नैना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और उसने ड्राइवर से तेज़ गाड़ी चलाने को कहा। उसकी बात मानकर ड्राइवर ने भी कार की स्पीड कुछ तेज़ कर दी, लेकिन वो अभी भी सेफ स्पीड से ही कार ड्राइव कर रहा है। दूसरी तरफ अक्षत अकेला उस जगह पर बैठा हुआ नैना का इंतज़ार कर रहा है और थोड़ा सा बेचैन हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वहाँ पर कोई भी उन दोनों को देखे। वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं है और स्टाफ में से भी सिर्फ एक वेटर को ही वहाँ पर आने की परमिशन है। और अभी कुछ देर पहले ही वो अक्षत के लिए एक ड्रिंक टेबल पर रख कर गया और अक्षत बार बार अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर टाइम देखते हुए नैना का इंतज़ार कर रहा है। 8 बज गए हैं लेकिन अभी भी नैना वहाँ पर नहीं पहुँची, तो अक्षत बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया है। उसने सोचा कि एक बार कॉल करके वो नैना से पूछ लेता है और उसे लगा कि अगर नैना को देर हो रही है तो वो खुद भी कॉल या मैसेज करके उसे इन्फॉर्म कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सोचते हुए आखिर में अक्षत ने खुद ही तुरंत उसे कॉल लगाई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, नैना का कॉल नहीं लगा, उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बता रहा था। ये देखकर अक्षत बहुत ही मायूस हो गया और उसने अपना मोबाइल पर हाथ में लेकर उसकी स्क्रीन पर लगी हुई नैना की बड़ी सी तस्वीर देखते हुए कहा, कहाँ हो नैना? उसकी स्क्रीन पर नैना की पूरी फोटो नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें लगी हुई थी जो कि उसे बहुत ही खूबसूरत लगती थी। और नैना के पूरे फेस में अक्षत को सबसे ज्यादा उसकी बड़ी बड़ी भूरी गहरी आंखें ही पसंद है और वो अक्सर ही उनमें खो जाता है। इसके अलावा उसने इसलिए भी नैना की पूरी फोटो नहीं लगाई क्योंकि वो नहीं चाहता कि रागिनी उसके मोबाइल पर नैना की तस्वीर देख ले और उसे अक्षत पर शक हो जाए। अक्षत मोबाइल फोन पर नैना की तस्वीर देखकर उससे बात करते हुए बोला, नैना हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं कि रागिनी जैसी लड़की की वजह से टूट जाए? मुझे पता है तुम जरूर किसी जरूरी काम में अटक गई होगी, लेकिन कम से कम एक बार इन्फॉर्म कर देती, आखिर मैं कितनी देर इंतजार करूं? मुझे पहले ही 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता शायद तुम अब यहाँ पर आओगी। इतना बोलते हुए अक्षत ने अपने ग्लास सामने रखी हुई ड्रिंक पूरी एक सांस में ही पीकर खत्म कर दी और फिर ग्लास पटक कर टेबल पर रखते हुए उठकर खड़ा हो गया और वहां से निकलकर बाहर चला गया। नैना की कार उसी होटल के बाहर आकर रुकी क्योंकि अक्षत ने उसे होटल का नाम बता दिया था और नैना ने टाइम देखा तो अब तक 8:30 बज गए थे और 9 बजने वाले थे। नैना ने अपने आप से कहा, शिट, बहुत ही ज्यादा लेट हो गई मैं, अब मनाना पड़ेगा मिस्टर अक्षत कपूर को। कोई बात नहीं, मैं उसे बताऊंगी तो वो सब कुछ समझ जाएगा, आखिर सुनैना की हालत भी तो ऐसी थी। ये सब सोचते हुए नैना जल्दी से उस कार से बाहर निकली और लगभग भागते हुए वो होटल के पार्किंग एरिया के एंट्रेंस गेट से अंदर पहुंची। नैना जैसे तैसे भागते हुए वहां पर अंदर आई लेकिन उसे वहां पर अक्षत नहीं दिखा और वो वहां वीआईपी रूम पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर सारी डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उन दोनों के लिए ही डिनर भी टेबल पर सजा हुआ था जो कि शायद उसके आने से पहले ही वहां पर आ गया था, लेकिन अक्षत का वहां कोई भी नामो निशान नहीं था और ये देखकर नैना को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर सारा इल्जाम लगाते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है नैना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, क्यों तुम सारी चीजों का सबका ध्यान नहीं रख सकती? अगर तुम सुनैना के लिए परेशान हो तो फिर ये क्यों भूल जाती हो कि कोई तुम्हारे लिए भी परेशान है? तुमने अक्षत का दिल दुखाया है, शायद इसीलिए ही वो यहाँ से चला गया। नैना खुद को कोसते हुए ये सब कुछ बोल रही है और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी हैं। उसे पता भी नहीं चला कि कब ये सब बोलते हुए वो वहाँ चेयर के पास जमीन पर ही घुटने के बल बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर ही रोने लगी।
उसे इस तरह देखकर उस होटल का मैनेजर वहाँ पर आया और क्योंकि जो स्टाफ वहाँ पर काम के लिए था उसने नैना को ऐसे रोते हुए देखा तो उसने जाकर मैनेजर को ये बात बता दी। मैनेजर ने नैना को इस तरह से देखकर कहा, आर यू ओके मैम? वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी लेकिन मैनेजर की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी वो रुक गई और उसने एक नज़र उठाकर मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी था वो कितने देर पहले कहाँ से गए हैं? मैनेजर की तरफ देखकर अपने आंसू पोंछते हुए नैना ने उसे ये सवाल किया। वो खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे पता है इस तरह रोने से तो कुछ भी बात नहीं बनने वाली और वो चीज़ें और भी बिगाड़ देगी, इसीलिए नैना ने ये सवाल पूछा इस उम्मीद में कि शायद अक्षत अभी यहाँ पर आसपास ही हो और वो भी अपनी कार से यहाँ पर ही, तो वो जल्दी से उसके पीछे जा सकती है उसे मनाने के लिए। मैनेजर को नैना के इस सवाल का कोई भी आइडिया नहीं है इसीलिए उसने अपने साथ खड़े वेटर की तरफ देखा क्योंकि वही यहाँ पर आज सर्विस दे रहा था तो उसे शायद इस बारे में पता हो और उस वेटर को पता भी था। उसने अपने मैनेजर की नज़रों का मतलब समझते हुए कहा, सर वो हीरो, मेरा मतलब है एक्टर अक्षत कपूर, वो आए थे ना यहाँ पर, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्हें आज हमारे होटल में देखकर मैं बहुत ही खुश था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मायूस थे और अभी बस 5 मिनट पहले ही वहाँ से निकल गए, काफ़ी देर से वो आपका यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप। वो वेटर शायद अक्षत का कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन था इसीलिए अपनी एक्साइटमेंट में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वो इसके आगे कुछ बोलता से पहले ही मैनेजर ने उंगली से उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर नैना की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी फॉर माई स्टाफ बिहेवियर मैम, बट सर। मैनेजर इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नैना अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए हैं लेकिन फिर भी उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इट्स फाइन एंड थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं भी अब निकलती हूँ, आप ये सब क्लीन करवा दीजिएगा। इतना बोलकर नैना तुरंत ही लगभग भागते हुए उन दोनों के साइड से निकलकर उस प्राइवेट वीआईपी रूम से बाहर निकल गई। वो सारी चीज़ें जो कुछ भी अक्षत ने उसके लिए स्पेशल प्रिपेयर किया था वो सब देखकर नैना को रोना तो आ रहा है लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसे यहाँ तक आने में थोड़ी देर हो गई है। इसके अलावा वो वहाँ से निकलकर वापस अपनी कार में तो आ गई और अपना दोनों हाथों से सिर पकड़ते हुए पीछे कार की बैक सीट पर भी बैठ गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अक्षत यहाँ से निकलकर कहाँ गया होगा, लेकिन वो काफ़ी नाराज़ होगा ये तो वो जान गई है, नहीं तो वो कभी भी इस तरह से उसके आने से पहले वहाँ से नहीं जाता। इस बारे में सोचते हुए नैना ने अपना सिर कार की बैक सीट से टिका लिया और फिर सोचने लगी कि इसके आगे वो क्या करे और कहाँ जाए। क्रमशः